नमस्कार आदाब साथियों, मोबाइल वाणी आपके लिए लेकर आया है गुरु मंत्र कार्यक्रम, जिसमें हम सुनेंगे विभिन्न शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिया गया अलग अलग विषयों पर पढ़ाई के लिए दिशा निर्देश। तो आइए सुनते हैं आज की टिप।
मैं पंकज कुमार सिंह, प्लस टू हाई स्कूल नगर नौसा में राजनीति शास्त्र का शिक्षक। बच्चों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। फंडामेंटल राइट कौन से महत्वपूर्ण हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से, नीति निर्देशक तत्व कौन से महत्वपूर्ण हैं, उन दोनों के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी संविधान की कल्पना उसके नागरिकों को प्रदत्त अधिकार के बिना नहीं की जा सकती है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो शासन की तरफ से जनता को कुछ अधिकार देता है, या जनता खुद की तरफ से खुद को कुछ अधिकार से अपने को अंगीकृत करती है। जो भी हो, जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए गए, क्योंकि अमेरिका का संविधान काफ़ी पुराना है और हमने 20वीं सदी में अपना संविधान बनाया, इसलिए अमेरिकी संविधान के मौलिक अधिकार को ही हम लोगों ने ग्रहण किया। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन है। इन अधिकारों में सबसे प्रथम है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में है। यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 14 में प्रदत्त अधिकार ब्रिटिश लॉ से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगा। लेकिन इसके ही अपवाद इसके नीचे के अनुच्छेदों में 15, 16, 17, 18 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देता है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हम लोग का है, वह स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। इसमें 6 स्वतंत्रताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ये नंबर है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 2 में है शांतिपूर्ण, निःशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता, और 3 में संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, 4 में राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता, 5 में है किसी भी तरह की आजीविका चयन करने की स्वतंत्रता, और 6 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण है। आगे प्राण और शारीरिक स्वाधीनता के को भी संरक्षण देता है अनुच्छेद 21। तीसरा अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से 25 तक में वर्णित है। तो चौथा अधिकार है सबसे महत्वपूर्ण, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से 28 तक में वर्णित है। इस अधिकार से ही भारत का सेकुलर संविधान बनता है। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार। इसका वर्णन 29, 30 और 31 में था, जिसमें से संपत्ति का अधिकार 30 में संविधान से हटा दिया गया। छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, और इसका मूल अनुच्छेद 32 में है, जिसमें न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नागरिक को अपने बारे में न्याय करने का डायरेक्ट हक प्रदान किया गया है। इन 6 अधिकारों के बाद संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। यद्यपि भारतीय संविधान के अधिकारों की तरह नीति निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों से ये आशा की गई कि जब वे कानून बनाएंगे तो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से आगे आएगा राज्य, और राज्य इस विषय में कानून बनाएगा, और इस नीति निदेशक तत्वों को अमल में लाने के लिए कई कानून बने, पंचायती राज का गठन इसी के मूल में है। समाजवादी व्यवस्था जो 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में जोड़ी गई, उसकी भी अनुभूज नीति निदेशक तत्व में 1949 से ही सुनाई देती है। इस प्रकार नीति निदेशक तत्व और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के विरोधी नहीं है जैसा कि कभी कभी समझा जाता है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक है। अगर कोई बहुत बड़ी खाई बनी रही तो संविधान और देश की रक्षा करना मुश्किल होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राइट के साथ साथ नीति निदेशक तत्वों पर भी बल दिया।
दोस्तों, अगर शिक्षा और परीक्षा की तैयारी से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हम तक पहुँचाइए। नंबर 3 दबाकर हम आपके सवालों के जवाब विशेषज्ञों से प्राप्त कर आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।